તારીખ 3/1/1995 શ્રી સમયસારજી શાસ્ત્ર પર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું દેવલાલીમાં પ્રવચન, સળંગ પ્રવચન નંબર 69.
તમે આતા રહેતા હૈ ઇસકે બાવજૂદ ભી અનાદિ બંધ કે વશ પર દ્રવ કે સાથ એકપણા કા નિશ્ચય છે મૂઢતા પ્રાપ્ત હુઈ હૈ જ્ઞાની કો ઇસ વિષય મેં વો મૂઢ હો ગયા હૈ કિસ કારણ સે કે અનાદિ સે જો કર્મ બંધ ચલા રહા હૈ ઉસકા ઉદય મેં ઉસકે વશ હોતા હૈ એસે કહેતે ને કે યે આદમી એસા પ્રકૃતિ વશ હૈ આપ કુછ ભી કરો ઇસકી પ્રકૃતિ હી એસી હૈ તો ઉસકે સાથ જરા સોચ સમજ કે વ્યવહાર કરના જૈસે કોઈ ગરમ પ્રકૃતિ કા આદમી હૈ ગુસ્સા વાળી પ્રકૃતિ હોતી હૈ તો બાદ બાદ મેં વો ગરમ હો જાયેગા તો પ્રકૃતિ કે વશ હો ગયા હૈ વો એસા કર્મ વો અનાદિ સે ઉસને બાંધતા 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 બનતા ચલા આયા હૈ ઓર વો પ્રકૃતિ વશ હૈ પર ઇસલિયે ઉસકા એકપણા પરદ્રવ કે સાથ એકપણા કા નિશ્ચય હૈ એકત્વ કા નિશ્ચય હૈ ઇસકા મતલબ યે હુઆ કે પહેલે નિશ્ચય બદલના ચાહિયે બરાબર ઇસલિયે સમ્યક દર્શન કે પહેલે જ્ઞાન સ્વરૂપ આત્મા કા નિશ્ચય કરને કી બાત 144 મેં કહી હૈ કે ઉલટા નિશ્ચય હૈ તો પરિણમન ભી ઉલટા હૈ નિશ્ચય સુલતા હુઆ તો પરિણમન ભી સલટેગા તો વો કારણ હૈ ક્યો માલુમ નહીં પડતા હૈ ક્યા માલુમ નહીં પડતા હૈ અજ્ઞાની કો કે યે અનુભૂતિ હૈ વહી મેં હું એસા આત્મજ્ઞાન ઉસકો ઉદય હોતા નહીં હૈ પ્રગટ નહીં હોતા ઉસકો માલુમ નહીં પડતા યે માલુમ નહીં પડને કા કારણ હૈ લેકિન અનુભૂતિ નહીં હૈ વો બાત નહીં હૈ બાત રહી માલુમ પડને કી ઓર નહીં પડને કી તો કારણ તો દે દિયા કે પરદ્રવ કે સાથ એકપણા કા જો નિશ્ચય હૈ એ નિશ્ચય સે માલુમ નહીં પડતા હૈ કે યે અનુભૂતિ એસો મેં હું અનુભૂતિ હૈ તો સહી એકાંત અનુભૂતિ સ્વરૂપ આત્મા હૈ એકાંત શબ્દ ઇસલિયે લગાતે હૈ ઇસમેં કે વહાં અનેકાંત નહીં હૈ કે પર કી ભી અનુભૂતિ હો સ્યાત પર કી ભી અનુભૂતિ હૈ ઓર સ્યાત સ્વ કી ભી અનુભૂતિ હૈ એસા નહીં હૈ વહાં જ્ઞાન સ્વ પર પ્રકાશક હૈ અનુભૂતિ મેં સ્વ પર વેદકતા નહીં હૈ અનુભૂતિ તો વેદન સ્વરૂપ હોતી હૈ ઓર ઉસમેં સ્વ પર વેદકતા નહીં હોતી તો અનુભૂતિ વેદન સ્વરૂપ નહીં હૈ અનુભૂતિ જો હૈ તો સ્વ પર દોનો કા વેદન સ્વરૂપ નહીં હૈ ઉસમેં એક અકેલા સ્વ કા હી વેદન હોતા હૈ પર કા વેદન હોઈ નહીં સકતા યે વસ્તુ સ્થિતિ હૈ ઇસલિયે ના એકાંત અનુભૂતિ સ્વરૂપ કહેતે હૈ આત્મા કો તો યે એક બહોત આશાસ્પદ બાત છેડી હૈ ભગવાન અમૃતચંદ્ર આચાર્ય દેવને કે દેખો તુમ અજ્ઞાની હો તુમકો ભી જ્ઞાનાનુભૂતિ પ્રગટ હી હૈ ઓર વહી તેરા આત્મા હૈ ઓર જગે તેરા આત્મા નહીં અનુભૂતિ હૈ વહી આત્મા હૈ દૂસરા કોઈ આત્મા હૈ હી નહીં સ્વરૂપ સે અનુભવ મેં આને વાલા જ્ઞાન હી આત્મા હૈ પરમાગમ સાર 733 મેં આધાર લિયા થા આગે અપને વો ઇસમેં ભી લિયા હૈ અપની જો પુસ્તિકા હૈ છોટી 733 નંબર માં સ્વરૂપ સે અનુભવ મેં આને વાલા સ્વપણે અનુભવ મેં આને વાલા જ્ઞાન હી આત્મા હૈ મોક્ષાર્થી હો કરકે અપને મેં જો જ્ઞાન વેદન હૈ માત્ર જ્ઞાન કો અવલોકન કરકે અપને જ્ઞાન વેદન મેં અપનત્વ કરના હૈ फिर से मोक्षार्थी होकर के अपना जो ज्ञान वेदन चल ही रहा है उसको अवलोकन करके उसमें मैं पना करना है, उतना सा काम है। कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है कि हमको स्मरण नहीं रहती है, हमारा क्षोभम नहीं है, वो बात नहीं है उसमें। जब तिरियंज भी कर सकता है तो मनुष्य की तो शक्ति बहुत ज्यादा प्रकट है पर्याय। उसको तो ज्ञान का और पुरुषार्थ का क्षोभम ज्यादा है, लेकिन संगी पंचेंद्रीय प्राणी तिरियंज हो तो भी कर सकता है, तो फिर मनुष्य तो कर ही सकता है। और जब से ज्यादा योग मनुष्य देह में ये है, विचार शक्ति बहुत है, समझ शक्ति भी अच्छी है, इसलिए इस बात को अच्छी तरह समझ करके अगर प्रयोग में ले जाते हैं तो काम होता है। समझ करके राजी हो जाए, संतुष्ट हो जाए, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बस उतना ही, सुन सुन करके राजी होना है, उतना ही होना है कि नहीं, काम तो अब हमारा शुरू होता है। जब ऐसी बात सुनने में आती है तब से ही काम शुरू होने की एक नई परिस्थिति खड़ी होती है और नई जिम्मेदारी भी खड़ी होती है। अगर इस बात सुनकर के भी हम प्रयोग नहीं करते हैं तो इस बात सुनने का जो मौका हमको मिला इसका सदुपयोग नहीं हुआ किंतु दुरुपयोग हुआ। यानी इस बात का प्रयोग नहीं किया तो उसका सही मूल्यांकन नहीं किया। राजी हुए तो भी, कहा राजी हुए तो भी सही मूल्यांकन नहीं किया। सही मूल्यांकन नहीं किया तो क्या किया कि इस बात का अवमूल्यन किया, डिवैल्यूएशन किया। क्या ये मेरा पैसे का डिवैल्यूएशन होता है कि नहीं, रुपया गिरता जाता है कितने सालों से, 40-50 साल से। ये बात सुने तो उसका जो भी मूल्यांकन है वो मूल्यांकन प्रयोग से होता है। हम देव गुरु शास्त्र सत्पुरुष की भक्ति करते हैं, करते हैं, तो सच्ची भक्ति किसको कहे कि जैसी उनकी आज्ञा है वैसा करे, तो भक्ति तो करे लेकिन ऐसा कुछ करे नहीं तो वो भक्ति भक्ति के स्थान में सही नहीं है। इसलिए उल्टा क्या हो रहा है कि एक पना का निश्चय से विपरीत निश्चय से मूढ़पना जो प्राप्त हुआ है या हमारे हित अहित के विषय में अविवेक रहता है, विवेक नहीं रहता है, ऐसा जो अज्ञानी है उसको यह अनुभूति है, यानी ज्ञान में वेदन की क्रिया जो है उसमें वही मैं हूं, ऐसा आत्मज्ञान, ऐसा परिणमन उदित होता नहीं, ऐसा परिणमन होता ही नहीं उसको, इसलिए उसको मालूम नहीं पड़ता। अगर मोक्षार्थी होकर के अंतर में अपने वेदन को आविर्भूत करे, कैसे करे वो बात तो आचार्य महाराज ने 15 गाथा में बहुत विस्तार से बताई है कि ज्ञान विशेष को तिरुभूत करना और ज्ञान सामान्य को आविर्भूत करना, और उसकी पूरी विधि 15 गाथा में बताई है। निमित्त को गौण करना हो तो है ही, राग को गौण करना वो तो है ही, लेकिन निराकार ज्ञान रूप ज्ञान विशेष को भी गौण कर देना, तब ज्ञान सामान्य का आविर्भाव हो सकता है। हमारे ज्ञान के पर्याय में दो अंग है, दो पर्याय नहीं है। हमारे जो ज्ञान की पर्याय है इसमें दो अंग है, एक बाह्य अंग है और एक अंतरंग है। ज्ञान का अंतरंग, ज्ञान का अंतरंग ज्ञान सामान्य है और ज्ञान का बहिरंग ज्ञान विशेष है। बहिरंग उसको इसलिए कहते हैं कि वो बाह्य पदार्थ के साथ उसका निग्नायक निमित्त नैमित्तिक संबंध रहा, अन्य पदार्थ को ज्ञान में लेने का या अन्य पदार्थ से ज्ञान का संपर्क रहा, इसलिए उनको कहते हैं कि वो बाह्य अंग है। जबकि ज्ञान सामान्य जो ज्ञान वेदन रूप है उसमें ज्ञेय का कोई पहुंच नहीं, कोई संबंध नहीं, कोई आकृति नहीं, कोई निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं होता। और उस ज्ञान पर्याय का विज्ञान ऐसा है, साइंस ऐसा है कि जब तक ज्ञान विशेष आविर्भूत रहता है तब तक ज्ञान सामान्य तिरोभूत रहता है, और जब ज्ञान सामान्य आविर्भूत होता है ज्ञान विशेष तिरोभूत होता है। न दोनों का कभी एक साथ आविर्भाव होता है, न दोनों का कभी एक साथ तिरोभूत प्रणाम होता है। जब यही वैज्ञानिक परिस्थिति है और ज्ञान विशेष के आविर्भूत होने से नहीं चाहे तो भी ज्ञेय लुब्धता हो ही जाती है, वहां से चारित्र गुण में राग की उत्पत्ति हो जाती है। जीव को राग क्यों उत्पन्न होता है ये मूल की बात है, क्योंकि राग उत्पन्न होता है, राग से दुख होता है, राग में आकुलता है, आकुलता से दुख उत्पन्न होता है, और हमारा प्रयोजन दुख को मिटाने का है, इसलिए बात तो प्रयोजन की है। तो राग क्या हुआ कि ज्ञान विशेष का आविर्भाव आविर्भूत होने से निर्लुब्धता उत्पन्न हो जाती है और चारित्र गुण में राग की उत्पत्ति नियम से हो जाती है, यानी व्यामोह खड़ा हो जाता है, मोह उत्पन्न होता है, निर्लुब्धता यही मोह है जीव का। जबकि पदार्थ न अच्छा है न पदार्थ कोई बुरा है, पदार्थ कोई अच्छा बुरा है क्या? कौन सा पदार्थ बुरा है, कौन सा पदार्थ अच्छा है? कोई पदार्थ अच्छा बुरा तो है ही नहीं, सब परमाणु की अवस्था है, अपने आप में है, तो जीव को क्या लेना देना है, जीव को कोई संबंध है ही नहीं। फिर भी ज्ञान में वो ज्ञेय होता है, उस वक्त ज्ञान विशेष का आविर्भाव अगर रहा तो ज्ञेय लुब्धता उत्पन्न हुए बिना रहेगी ही, इसको गौण किया जा सकता है, उसको बंद नहीं किया जा सकता। क्या ज्ञान में ज्ञेय का झलकना वो अनिवार्य है, उसको बंद नहीं किया जा सकता। अगर कोई ज्ञान में से ज्ञेय का झलकने को बंद करने का प्रयास करता है तो आत्मा को नाश करने का प्रयास करता है, तो ज्ञान को नाश करने का प्रयत्न मैंने आत्मा को नाश करने का प्रयत्न करता है, तो ऐसा कभी हो सकता नहीं है। चाहे केवल ज्ञान हो चाहे सदमस्त का ज्ञान हो, ज्ञान में तो ज्ञेय झलकेगा झलकेगा और झलकेगा ही। लेकिन अगर इसको गौण किया जाए और ज्ञान सामान्य को मुख्य किया जाए तो मुख्य करने की विधि क्या, वो इसमें गर्भित है। कि ज्ञान सामान्य अनुभूति रूप है और उसमें मैंपना करने से मुख्यता आती है और वो आविर्भूत होने लगता है। जब वो आविर्भूत होता है तो ज्ञान विशेष हो तिरोभूत हो ही जाता है, स्वतः ही तिरोभूत तिरोभूत हो जाता है। नहीं, 15 गाथा में तो होकर उसका व्यवच्छेद हो जाता है। व्यवच्छेद होने पर एकाकार ज्ञान ही ज्ञान अनुभव में आता है, फिर ज्ञान में अनुभव में आता नहीं है। वो अनुभव जो झूठा अनुभव है वो छूट जाता है। वैसे नहीं तो अनुभव में आता ही नहीं था, वो तो एक अध्यास था, एक भ्रांति थी, वो भ्रांति छूट जाती है। हाँ, वो ऑटोमेटिक है। एक की मुख्यता में दूसरे की गुणता ऑटोमेटिक है, स्वतः ही होता है। ये वैज्ञानिक परिस्थिति है, वो साइंटिफिक पोजीशन है। ये हाँ, तो पहले तो मोक्षार्थी तो हो जाओ, पहले। इसलिए आचार्य महाराज ने एक शर्त रखी है, कि प्रयोग के पहले एक शर्त रखी है, कि मोक्ष कामेण, जो मोक्ष की कामना वाला है वो ये प्रयोग करता है। दूसरा, ये प्रयोग करने की क्षमता को प्राप्त हुआ नहीं है, क्योंकि इसके लिए भी पुरुषार्थ चाहिए, फोर्स चाहिए। और ये फोर्स कहां से आता है, कि मोक्ष की कामना में से आता है। एक दफे मोक्ष की कामना हो जाए, यानी पूर्णता का लक्ष्य हो जाए, तो देखो तो सही कि आपको परिणमन में अपना आत्महित का कार्य करने का कितना फोर्स आता है, कितना बल आता है, कितना जोर आता है। अगर ये पूर्णता का लक्ष्य हुआ तो आपके इसके बाद आपके परिणमन की सारी दुनिया बदल जाएगी। आप परिणाम के हिसाब से देखा जाए तो आप कोई नई दुनिया में चले जाएंगे। जी, अलौकिक दुनिया में चले जाएंगे। करके देखो, फिर ये प्रयोग करना उतना कठिन नहीं है। इसके पहले सब कठिनाई लगेगी। तो जैसी गुरु आज्ञा है कि शुरुआत अगर मुमुक्षुता की करनी है, आत्मकल्याण की शुरुआत करनी है, तो वास्तविक शुरुआत तो पूर्णता के लक्ष्य से ही होती है, मतलब इसके बिना नहीं होती है। तो बात तो जो कही है बहुत जबरदस्त बात की है, और नई दुनिया में प्रवेश करना है तो यहां से चालू करो, वरना ये प्रश्न खड़ा हो जाएगा कि अनुभूति तो है लेकिन मैंपना करे कैसे। तो मालूम ही नहीं पड़ती है अनुभूति, तो मैंपना करेंगे कहां से, कैसे करेंगे, तो मालूम नहीं पड़ रही है तो किस काम की है। कि हमारे लिए तो है लेकिन नहीं है के बराबर है। इसलिए एक शब्द रखा है, वो एक शब्द में बहुत रहस्य भरा हुआ है। मोक्ष कामेण उतना ही लिया है। अच्छा, एक बहुत अच्छी बात वो है उसमें कि हमारा लक्ष्य अगर मोक्ष का नहीं है तो हम क्यों हमारी समय और शक्ति को बर्बाद करते हैं इधर आकर के। जब हमारा लक्ष्य मोक्ष का नहीं है, पूर्णता का नहीं है, तो फिर इधर आकर के हम हमारी समय और शक्ति को क्यों बर्बाद कर रहे हैं। थोड़ा इतना ओलम बालो करके भी लक्ष्य बांधना चाहिए मान लेना, मान लेना चाहिए। मैंने उकसाना पड़ेगा आत्मा को, बहुत ठंडा होकर के बैठे बैठे सुना रहता है कि मोक्ष पूर्णता का लक्ष्य मानना चाहिए, पूर्णता का लक्ष्य मानना चाहिए, लेकिन मानता तो है नहीं। और गाड़ी आगे चलती भी नहीं है, गाड़ी रुक गई है वहां की बात सुनते हैं, बार बार सुने, बार बार पढ़े, तो ये कोई काम करने का ढंग नहीं है, ये कोई काम करने का ढंग नहीं है। कोई भी काम हम बिना लक्ष्य नहीं करते, कोई काम बिना लक्ष्य करते क्या है? छोटा से छोटा काम ले लो कि यहां स्वाध्याय का समय अभी 2 मिनट में पूरा हो जाएगा और हम हमारे चप्पल जूते में पैर रखेंगे, है ना? इसके पहले हमको कहां जाना है वो लक्ष्य में आ जाएगा कि हमारे कमरे में जाना है, या हमें मंदिर जाना है, या हमें कहीं और जगह जाना है। हमारा जाने का जो अंतिम लक्ष्य है वो पहले आता है, फिर हमारा पैर जूते चप्पल में जाता है, इसके पहले नहीं जाता है, इसके पहले उठते भी नहीं हम। छोटा सा छोटा काम में हमारा अंतिम लक्ष्य है वो पहले फिक्स हो जाता है, फिर हमारे जो कदम है वो उठता है। हर काम में देख लो आप, कोई रेलवे की टिकट बारी पर जाकर के ऐसा बोलता है कि टिकट दे दो, कहां की गए मालूम नहीं। अरे भैया टिकट देना मतलब किस स्टेशन की टिकट चाहिए तुमको? डेस्टिनेशन तो कोई होना चाहिए तुम्हारा। और इतना बड़ा काम है पूरा संसार को खत्म करने का, पूरा दुख को मिटाना है। संसार छोड़ो, अपने को दुख तो नहीं चाहिए ना, सुखी सुख चाहिए, तो इसके लिए कोई ध्येय कोई लक्ष्य तो होना चाहिए। बिना लक्ष्य ऐसे ही हम प्रवृत्ति करते रहते हैं, वो ध्येय शून्य प्रवृत्ति हो रही है। क्या प्रवृत्ति हो रही है हमारी? कोई भी धर्म साधन ध्येय शून्य होता है वो कभी सफल होता नहीं है, क्योंकि साध्य के बिना साधन का उपचार लागू नहीं होता। इस परिणाम को बिना साध्य साधन परिणाम को साधन कहा जाता नहीं है। तो ये बात थोड़ी वास्तविकता की रही, इस वास्तविकता पे हमें आना होगा तभी हमारा काम सफल होगा। ऐसी बात है, समय हुआ है यहाँ तक,
क्योंकि आवश्यकता अपने यहाँ पे एक